ये जो डामाडोल स्थिति रहती है मन की, एक तो विशेष कारण यह है कि जो कुछ भी हमने पढ़ रखा है या सुन रखा है पर निश्चय पक्का नहीं होता, जिसको कहते हैं कि फ्लिकरिंग माइंड, फ्लिकरिंग डिसीजन, फ्लिकरिंग फेथ। तो उसमें फेथ में दृढ़ता नहीं बल्कि चलायमानता रहती है, या यूं कह लें कि हमारी मानसिक कमजोरी रहती है। और इसमें यदि आपको दृढ़ निश्चय चाहिए तो गुरु की लाइफ को, गुरु के जीवन को देखना पड़ता है। वहाँ से आपको बिल्कुल एकदम क्लैरिटी हो जाती है, बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जैसा मन चाहे मान लिया, जैसा मन चाहे निश्चय कर लिया उसके बारे में। क्योंकि जब ये वाणी कह रही है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, दूसरी कह रही है कि वो जो होना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माही, तो ये जब बातें जब आती हैं वाणी में तो ईश्वर कोई अनिश्चय वाली चीज तो है नहीं या डाउट वाली चीज तो है नहीं। लेकिन हम जो है प्रैक्टिकली अपने आप को और जगत के लोगों को ही करता, प्रैक्टिकली उन्हीं को करता समझते हैं, इसीलिए उनका प्रेशर भी हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन यदि सत्पुरुष के जीवन को देखा जाए तो वहां से ये चीज बड़ी ही क्लियर हो जाती है। जैसे कि महाराज जी जंगल में बैठे हैं, मान लिया सरूपा जंगल को ही ले लें, और भगत जी उनके सामने बैठे हुए, और उस घोर रात्रि में वाणी आ रही है और वाणी कितनी एक्यूरेट और कितनी ट्रुथफुल है। वो जो भी बयान कर रही है वो एक लाइफ का ट्रुथ है, सारे शास्त्रों का ट्रुथ है, वो पूरी प्रकृति का रहस्य, ईश्वर का रहस्य सब वहां ओपन हो रहा है। और उसका प्रभाव जब रुकता है सुबह को, भगत जी जब महाजी को स्नान करा देते हैं, उनका जो भी डाइट थी चाय पीते थे, चाय पिला देते हैं, उसके बाद भगत जी वाणी को लेकर बैठते हैं महाजी के आगे। महाजी कहते हैं प्रेमी मेरा सुनाओ प्रभु की क्या कृपा प्रकट हुई। अब वो जो वाणी आ रही है महाराज जी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या आया है, सुनने के बाद उनको पता लगता है कि प्रभु की क्या कृपा प्रकट हुई है। और जब करेक्शंस की बात आती है, भगत जी से कुछ छूट जाता है या कोई गलती हो जाती है, तब महाराज जी को कई बार एक एक मिनट, दो दो मिनट भी लग जाते थे उसको एप्रोप्रिएट वर्ड वहां फिट कराने में। तब भगत जी क्वेश्चन भी करते हैं महाराज जी से, महाराज जी उस समय तो वाणी आपकी जो है नदी के स्रोत के समान, नदी के धारा के समान प्रभावित हो रही थी, लेकिन जब आप करेक्शन कराते हैं तो आपको कुछ वक्त लग जाता है इसमें, वहां कोई रुकावट नहीं होती, यहां रुकावट होती है, क्या कारण है? तो माई कहते हैं प्रेमी उस समय बुद्धि जो है उस ईश्वर सत्ता के साथ एक करके अनुभव करती है, समझिए, और प्रभु की लीला है वो, जो प्रभु ज्ञान प्रकट करता है इस शरीर के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, वो प्रभु की करनी है, साफ पता लग रहा है। तो ये वाणी को देखकर आपको ये निश्चय में आता है कि हम जरा सी बुद्धि का कितना अहंकार करते हैं, कोई गुण आ जाए मेरे अंदर, कोई योग्यता आ जाए, कितना अहंकार होता है कि देखो मैं कितना काबिल इंसान हूं, मैंने कैसे देखो चीजों को संभाल रखा है, मैं कितने बड़े बड़े काम कर लेता हूं। लेकिन सतपुरुष इस लीला को समझ रहे हैं, वो एक पल भी उनकी बुद्धि गाफिल नहीं है कि मैंने किया। उनके महाजी के मुंह से कभी निकलता ही नहीं था कि मैं वर्ड ही नहीं निकलता था उनके मुंह से। जो हमारा गुरु है वो खुद कह रहा है कि जो कुछ करनी है वो तो ईश्वर की करनी है, और वाणी उसका प्रमाण है। जब ईश्वर को कहते हैं ईश्वर ज्ञान रूप है, तो वाणी प्रमाण है ना कि ईश्वर ज्ञान रूप है या नहीं है। सारा ज्ञान तो वहीं से आ रहा है। जैसे बर्फ में से ठंडक आए तो बर्फ को क्या कहोगे, बर्फ तो ठंडक रूप है वो। बर्फ अपने आप में ठंडक रूप है, इसलिए उसमें से ठंडक निकल रही है। तो ईश्वर अपने आप में ज्ञान रूप है, वहां से ज्ञान निकल रहा है। अब महाराज जी के पास बैठ के लोगों को बड़ी शांति मिलती थी, बड़ा आनंद मिलता था बैठ के ही। तो जब कहते हैं ईश्वर ज्ञान, ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर शांति रूप है, तभी तो बैठ के महाराज जी के पास लग रहा है वो। तो वो ईश्वर वाणी ही प्रकट कर रही है उस बात को कि ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर शांति रूप है, ईश्वर ज्ञान रूप है। और गुरु की जो करनी है या गुरु के शरीर के द्वारा जो हो रहा है उससे ये चीज प्रमाणित हो रही है, सिद्ध हो रही है कि हाँ ये वास्तव फैक्ट है। हम यदि ऐसे कहते रहे ईश्वर ज्ञान रूप है, कौन विश्वास करेगा हमारी बात का? ईश्वर शांति रूप है, कौन विश्वास करेगा? लेकिन गुरु की स्थिति इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में वो ज्ञान रूप है, वास्तव में वो आनंद रूप है। और उसके मुकाबले में पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में ना कोई चीज ज्ञान रूप है ना कोई चीज आनंद रूप है। अभी आपको किसी के बात करके सुख मिल रहा है और उसी व्यक्ति की कभी बात सुन के आपको दुख भी हो जाएगा। कोई इच्छा प्रकट कर देगा, कोई आज्ञा दे देगा आपको पालन करने के लिए, तो कहोगे ये आदमी कहाँ मुसीबत बन गया मेरे लिए। तो ईश्वर का जो वास्तविक रूप है उसके बारे में वैसा ही हमारे अंदर निश्चय बुद्धि में नहीं होता, और वो ईश्वर गुरु के शरीर के अंदर क्रिया कर रहा है। क्रिया तो जो हो रही है गुरु के द्वारा, जो कृपा हो रही है वो शरीर के अंदर से ही तो आ रही है ना बाहर। वो चीज मेरे अंदर भी, वो प्रभु मेरे अंदर भी वैसे ही विराजमान है जैसे गुरु के शरीर के अंदर विराजमान है। लेकिन मेरे अंदर उस तरह का निश्चय कहां होता है ईश्वर के बारे में? महाराज जी ने उस तरह का जीवन जिया, कई जन्म वैसा जीवन जिया, तो इस जन्म में वो सारी लीला जो शास्त्रों में लिखी थी वो शरीर से प्रकट हो रही है नहीं हो रही है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है या नहीं है? इसमें किसी थ्योरी की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा महान ईश्वर जो इसी नाशवान देह के द्वारा सारी एक काम करता है, लेकिन मेरे द्वारा मुझे वो काम करता नजर नहीं आता, मेरे द्वारा मेरा मन ही काम करता हुआ नजर आता है कि मन में ये संकल्प उठता है, मन में ये बेचैनी उठती है, मन में ये इच्छा उठती है, तो मैं ये काम करता हूं शरीर से। तो मेरा जो प्रेरक है, मेरा जो क्रिया करवाने वाला है वो तो मन है, और गुरु का जो प्रेरक है, गुरु के शरीर से जो क्रिया करवाने वाला है वो सीधा ईश्वर है। ये दो डिफरेंस है नहीं है? तो अल्टीमेटली मेरे निश्चय में ही तो कमी कही जाएगी। तो वाणी आपको सिखा रही है कि जीव या बुद्धि मन के वशीभूत है, और मन वासना का सागर है जिसमें से इच्छाओं की तरंगे उठती रहती हैं, विकारों की तरंगे उठती रहती हैं, गुणों की तरंगे भी उठती हैं। लेकिन जो गुरु है जो फिजिकली उपलब्ध है, तो वहां सीधी सीधा जो है वह ईश्वर क्रियाशील है। यदि हम गुरु को जीव भी कहें तो वो जीव पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित है, ईश्वर के साथ एक है, और ईश्वर जो है इस मन को रिप्लेस करके उसे उस देह से क्रिया कर रहा है। यही इसी को तो गुरु कहेंगे हम, क्योंकि वो सहज समाधि वाला है। सहज समाधि का मतलब होता है कि जागर आंख खुली है तब भी समाधि में है, वो आंख बंद है तब भी समाधि में, वो एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं है। तो ये जो निश्चय है ये आपको गुरु के जीवन पर गहरा मनन करने से आपकी बुद्धि में बैठेगा, ये नहीं तो दुनिया को देख देख के फिर आप जो है वैसी बातें करने लगोगे। मैं यहां आते हुए मुझे 43 इयर्स हो गए, इसी प्लेस पे आते आते अब मैं जब सोचता हूं कि 43 साल से मैं आ रहा हूं, कभी एक बार तो गैप होता एक बार भी गैप नहीं हुआ। तो पहले तो मैं ऐसा सोचता था कि देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, लेकिन अब बुद्धि दूसरी बात सोचती है, क्योंकि 43 साल से तो छुट्टी मांगता था छुट्टी भी मिल जाती थी तुझको, तेरे छुट्टी को भी मना जाती डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें कितने काम होते हैं, या शरीरी इस प्रकार का रोगी हो जाता तो यहां आ ही नहीं पाता, या यहां की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि तेरा यहां मन ही नहीं लगता कुछ भी हो सकता था ना। देखिए 43 इयर्स का टाइम और लगातार यहां आने का जो है मौका मिला है, तो इसके पीछे कौन है? प्रैक्टिकली देखने में तो दुनिया भी यही कहेगी भाई आपकी कोशिश है, लेकिन मेरी बुद्धि अंदर से ये बात स्वीकार नहीं करती। सामाजिक रूप से तो कोशिश कही आई है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो ठीक है, लेकिन मनन जब करोगे तब पता लगेगा ये ईश्वर की देन है। ईश्वर ने इस देह को प्रारब्ध ऐसा दिया था कि इसने यहां पर आना था, तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली ये ठीक है, लेकिन प्रारब्ध आपका पास्ट कर्म ही तो है, तो पूर्व जन्म में कुछ इस मार्ग में कुछ कोशिश की होगी। महाराज जी ने भी पूर्व जन्म में कुछ कोशिश की थी तो उनको गुरु रूप में जीवन जीने को मिला, ये प्रारब्ध था महाराज जी, महाराज जी के देह का तो प्रारब्ध ही है, वो करनी थोड़ा है, वो तो देह का प्रारब्ध है, करनी तो ईश्वर की है। तो हमारा भी ये प्रारब्ध है, तो इस प्रारब्ध को मैनेज कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, तो इस प्रारब्ध को ईश्वर मैनेज कर रहा है, ईश्वर वो कंडीशंस पैदा कर रहा है। तो यदि आपको इस बात का होश बना हुआ है, शास्त्रों के वचन पर आपका गहरा मनन है, तभी तो इस निर्णय पे पहुंचोगे आप, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कुछ तो ईश्वर कर रहा है कुछ मैं कर रहा हूं, यहां आ जाओ। तो मनन के बाद आप इस निर्णय पर पहुंचते हो कि वास्तव में सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। तो आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान, तो आप अकर्ता हो बन जाते हो। जब ये निश्चय में पक्का होता है तो आप अकर्ता हो जाते हो, इसलिए महाजी अकर्ता है। महाजी कोई बात सुन लो उनके बात से यही पता लग जाएगा, महाजी अपने आप को तो अकर्ता कह रहे हैं, जो कुछ करता है वो उनके शरीर से ईश्वरी करता है, और अपने रूप के बारे में भी वो समता विलास में लिखकर भी दे रहे हैं, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। हम तो देखने में उस शरीर को ही गुरु कहेंगे, हमारा संबंध तो शरीर से ही बना है ना, लेकिन उस शरीर से जो गाइड कर रहा है आपको वो तो निराकार ईश्वर है। तो उस निराकार ईश्वर के लिए बारे में महाराज जी लिख कर दे रहे हैं, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि गुरु और ईश्वर एक है, दोनों में कोई भेद नहीं। तो मुझको भी हर पल ईश्वर गाइड कर रहा है, गुरु की देह को भी ईश्वर पर ईश्वर हर पल गाइड कर रहा है, अंतर कहां है? वो उनका प्रारब्ध है ये, मतलब उस गुरु की देह का प्रारब्ध है, ये हमारी देह का प्रारब्ध, यही तो अंतर है बस। तो इसीलिए आपकी देह से अच्छे कर्म भी होंगे, गलत कर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध डिसाइड करेगा। लेकिन गलत कर्म हो भी गया तो आपके अंदर कितना गहरा अफसोस होगा या पश्चाताप होगा, हे प्रभु कैसे कैसे मैंने पाप कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो ये प्रारब्ध मिला मुझे। आपको पता है गलती की सजा तो पाप है ना, फिर दुख है ना, गलती की सजा तो दुख है, वो तो मिलेगा आपको। अब गलती हो गई तो गलती मिलेगी, लेकिन आपको पश्चाताप होगा, प्रभु के लिए मन से प्रार्थना निकलेगी, हे प्रभु इस जन्म में तो कम से कम जो है तेरा होश बना रहे, नहीं तो वही पाप से बचाएगी मुझे और कौन बचाएगी। और जब तक अंतर्यामी ईश्वर के साथ आपका मन एक नहीं हो जाता, आप कर्ता बने रहोगे, देखो ना कर्ता बने रहोगे, और कर्ता बने हुए तो जैसा प्रारब्ध है उसके फल के भागीदार आप हो, कर्ता हो तो भोक्ता भी हो। तो ये जो अनिश्चय की हालत है ये हमारी इसीलिए बनी रहती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी मन बार बार कई बार भोगों में फंस जाता है, कई बार संसार के कर्मों में फंस जाता है, कई बार दूसरे की आलोचना में फंस जाता है, करते रहे दूसरे के अंदर ऐप देखना शुरू कर देते हैं और इस चक्र को भूल जाते हैं, ये प्रारब्ध चक्र। किसी के द्वारा मुझे दुख भी मिल रहा है तो मैं ये भूल जाता हूँ कि इसके द्वारा शरीर मुझको दुख मिल रहा है, ये तो मेरा प्रारब्ध है, ये तो ईश्वर दे रहा है, मैं इसे ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं, मैं इसको क्यों कोस रहा हूं। तो आप दिल से कोसते हो ना उसको, नहीं भी गलती करता है बेचारा, उसे बस उसके सुख देके ईर्ष्या करते हो उसे, आप उसके गुण देके ईर्ष्या करते हो क्योंकि उसका सम्मान हो रहा है समाज में, आपका अपमान हो रहा है तो आप जलने लगते हो। तो ये सारे जो दोष आते हैं अल्टीमेटली इसका आधार एक ही है कि ईश्वर का जो निश्चय है वो आपका पक्का नहीं, और ईश्वर का निश्चय पक्का होता है गुरु की करनी देख, गुरु की रहनी देख, नहीं तो ईश्वर से संबंध कोई है नहीं ना आपका, वो सर्वव्यापक होते हुए भी निराकार सत्ता है, उससे संबंध कैसे बनेगा आप बताओ। आप लिमिटेड हो, एक साइज है आपका, एक रूप है आपका, ईश्वर अनलिमिटेड है, तो लिमिटेड का संबंध अनलिमिटेड से कैसे बन सकता है, सीमित का संबंध असीमित से कैसे बन सकता है, संबंध तो नहीं बनेगा ना आपका। संबंध बनेगा तो गुरु से ही बनेगा, सीमित से ही बनेगा, गुरु का शरीर है सीमित है, गुरु की करनी भी आपको पता है क्या कर रहा है गुरु, तो गुरु की करनी गुरु की रहनी देखकर आपको उस ईश्वर का निश्चय होता है पक्का, जैसा ईश्वर के बारे में वाणी में या शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वास्तव में ईश्वर ऐसा ही है। जैसे गुरु केवल कल्याण करता है तो ईश्वर केवल कल्याण करता है, गुरु बदले लेता किसी से? गुरु को बदले नहीं लेता। माँ जी प्रेमी से जब कह रहे हैं प्रेमी नहीं आएगा तो डंडे के जोर से बुलाया जाएगा, तो वहां भी डंडा जो है वो गुरु का उसके कल्याण के लिए चल रहा है, उसको सजा देने के लिए थोड़ा चल रहा है भाई। तो वहां केवल कल्याण है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हमने यदि उसके वचनों पर उसके जीवन पर स्वाध्याय करके गहरा मनन किया, तब वो सारी बातें जो शास्त्रों की थ्योरी करके नजर आती हैं वो आपको सब एक प्रैक्टिकल दृश्य के रूप में नजर आने आएंगे। फिर आपको हर बात शास्त्र का हर राज गुरु के जीवन से खुल जाएगा आपके आगे। इसलिए कहना चाहिए गुरु का जो जीवन है वो बोलती हुई किताब है, बोलती हुई वाणी है, बोलता हुआ ग्रंथ है, हर राज वहां खुल जाएगा। इसलिए बाबाजी ने खुद कहा, प्रेमी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो जीवन पर घटित ना हुई। ये वर्ड्स महाराज जी ने क्यों कहे थे? इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो इनके जीवन पर घटित ना हुई। इसका मतलब शास्त्र का हर राज गुरु के जीवन पर मनन करने से गहरा वो खुल जाएगा। और मनन तो वही करेगा ना जो गहराई से, पूरे शौक से, पूरी लगन से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा हो, वही तो मनन करेगा। नहीं तो मनन करेगा कौन? बातें सुन लेगा, पढ़ लेगा या सीख लेगा, मनन तो नहीं करेगा। तो ये जो बातें हम सारी सत्संगों के रूप में, वार्तालाप के रूप में या स्वाध्याय के रूप में हम सीखते रहते हैं, तो ये केवल सीखने का चीज नहीं है, ये मनन की चीज है। मनन ये 24 घंटे चलता है, जब तक आप सो नहीं रहे हो, होश में हो, ये मनन जारी रहता है आपका। और ये मनन ही ईश्वर से आपको जोड़े रखता है। जब इन बातों पे मनन करोगे तो आप कहां से जुड़ोगे? संसार से जुड़ोगे या ईश्वर से जुड़ोगे? विचार करके देखो आप। जैसे कि साधारण व्यवसायी आदमी, साधारण संसारिक या संसारिक गृहस्थ आदमी दिन भर क्या सोचेगा? बच्चों के बारे में सोचेगा, सर्विस के बारे में सोचेगा, बिजनेस के बारे में सोचेगा, ग्राहकों के बारे में सोचेगा, शरीर के बारे में सोचेगा, घर की वस्तुओं के बारे में सोचेगा, पड़ोसी के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा। अब सुबह से लेकर शाम तक जब तक जाग रहा है वो सोच ही रहा है। वो तो इस सोचने को हम कहते हैं कि संसार के बारे में मनन कर रहा है। इस सोच के बारे में आप एक वर्ड क्या यूज करते हैं? संसार के बारे में। ये निरंतर मनन कर रहा है, इसका मनन चिंतन जो है वो संसार के बारे में चल रहा है। तो इसी प्रकार जो ईश्वर का मार्ग आ रही है उसका मनन चिंतन ईश्वर के बारे में चलता रहता है। आप घर में फंस गए, काम, दो गेस्ट आ गए, काम में फंस गए, आपका सिमरन छूट गया या आपका स्वाध्याय का टाइम था वो छूट गया, तो आपके बारे में क्या चलेगा मनन आपके अंदर? कि देखो अब गेस्ट आ गए हैं, मेरा कर्तव्य है इनका स्वागत करना, इनकी केयर करना। लेकिन मनन आपका छूट गया, वो आपका जो है वो ईश्वर वाला प्रोग्राम आपका छूट गया, तो वो आपके अंदर एक दर्द, एक सोच बनी रहेगी कि जल्दी से ये काम खत्म होगा, मैं फिर अपने प्रोग्राम पर चलूंगा। तो वो केवल एक कर्तव्य भावना से कर रहे हो, लेकिन दिल आपका जो है वो ईश्वर में ही पड़ा हुआ। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो दिल आपका यदि ईश्वर में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका ईश्वर का रास्ता कर्म करते हुए भी तय हो रहा है। और वो जो कर्म है आपका इतने निर्लेप भाव से होता है, या यूं कहिए केवल इतने कर्तव्य भाव से होता है कि उसका ये मन पे इफेक्ट है ना, वो नहीं रहता। और जब आप ईश्वर मार्ग में एडवांस कर जाते हो तो वो कर्म निष्काम हो जाता है आपका, उसका इंप्रेशन मन पे बनता ही नहीं। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एंड तक की जो है, ये धीरे धीरे आप देखिए कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसा जैसा आपका जीवन चलेगा, शुरू में तो आज्ञा पालन करते हो, महाजन का प्रेमी कम से कम एक घंटा सुबह, एक घंटे सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। और आपने गुरु आज्ञा को पालन किया है, इसको इसमें कितने काम छोड़ने पड़े होंगे आपको, या कितने अपना सुख, इंद्रियों के सुख छोड़ने पड़े होंगे इसके कारण जो है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, त्याग कर रहे हो ईश्वर के लिए, आप सिमरन में मन नहीं लग रहा आपका, लेकिन सेक्रीफाइस तो हो रहा है। ईश्वर को पता है मेरे लिए कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार फेल हो रहा है, ईश्वर को तो पता है इसका, वो तो अंतर्यामी है। तो ये 2 घंटे आपने जो सिमरन में खर्च किए, भले ही आप फेल होते रहे, लेकिन आपके अंदर एक बेचैनी तो बनी रही, हे भगवान कब मेरा मन लगेगा, प्रार्थना करोगे हे प्रभु मन लगाओ, आपके लिए बड़ी मुश्किल से तो समय निकालता हूं मैं, नहीं नहीं फिर भी मन में संसार याद आता रहता है, कृपा करो कुछ। अब देखो ना आपके दिल में क्या चल रहा है। तो ये जो आपका इनडायरेक्ट एफर्ट है, जिसमें फिजिकल एफर्ट आपका काउंट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है अंदर का, सूक्ष्म इफेक्ट जो है ये, ये आपको ईश्वर से जुड़े हुए, आपको मन को ही पता है ये समय मैंने ईश्वर के लिए निकाला था, ईश्वर के लिए खर्च किया है, आपको पता है इस बात। ऐसे आप कुछ समय सत्संग श्रवण में खर्च करते हो, कुछ स्वाध्याय में खर्च करते हो, कुछ लोक सेवा में खर्च करते हो, तो लोक सेवा भी आप जो है वो अंदर ईगो रख के नहीं करते हो, उसको भी आप जो है वो एक निष्काम सेवा के रूप में करते हो। तो सारा जो इफेक्ट आपको पर आता है वो फिर आपको ईश्वर से जोड़े रखता है। तो इस तरह जैसे जैसे आपका ये जो अनिश्चय की हालत है, या जो कंप्लेंट कर रहे हैं आप कि भाई हम निश्चय होते हुए भी बार बार जो है वो फिर संसार पकड़ लेता है, तो ये जैसे जैसे आपका मनन प्रोसेस आगे बढ़ेगा ये वो ये वीक पड़ता जाएगा। ये चीजें फिर आपको मैं गहरी हो जाएंगी, लेकिन प्रोसेस यही है, इसके लिए कोई अलग से कोई साधन नहीं है। साधन तो महाराज जी ने सब बता ही दिए, वही साधन अपनाने हैं, लेकिन साथ साथ ये जो मनन प्रक्रिया है ईश्वर के जीवन के बारे में, कि वहां से आपको इस बात का मिल रहा है ईश्वर की प्रेजेंस के बारे में, ईश्वर के करनी के बारे में, उसका प्रमाण गुरु के जीवन से मिल रहा है डायरेक्ट। तो इसीलिए जो महा जी कह रहे हैं कि गुरु के जीवन का अध्ययन करना, उनके दर्शन करना है, तो बात वो यही है। तो जैसा ऐसा आप जो है उन घटनाक्रम के बारे में ये मन में मनन करोगे, तो बार बार आपको ये निर्णय मिलेगा कि ईश्वर वास्तव में मेरे अंदर है मौजूद, जैसे गुरु की देह के अंदर मौजूद है मेरे अंदर भी मौजूद है वो। गुरु की देह से जैसे वो वाणी प्रकट करवा रहा है, गुरु की देह के द्वारा वो संसार को गाइड कर रहा है प्रभु सत्ता, वो मेरी देह में मौजूद है, वैसे ही मौजूद है। तो ये कोई कहानी तो नहीं है, ये तो वास्तविकता है। तो जैसे जैसे आपके अंदर हर समय ये बना रहेगा कि ईश्वर वास्तविकता है मेरे जीवन की, और हर पल मुझको वैसे ही देख रहा है, जैसे महाजी कहते थे प्रेमी यदि तू गलती से बचना चाहता है तो हर पल ध्यान रख कि गुरु तुझको देख रहा है। तो ईश्वर हर पल मुझको देख रहा है तो मैं कैसे गलतियां कर सकता हूँ, मतलब गलती के प्रति अलर्ट रहेंगे ना, जो चालाकियां करते हैं, जो मतलब कि व्यवहारिक या स्वभाव में जो मनुष्य की होती हैं। तो इस तरह से आपका जो ईश्वर निश्चय है वो पक्का हो जाएगा। पक्का मतलब है ईश्वर का एक लाइव निश्चय चाहिए। हमारे अंदर निश्चय तो होता है, कोई नहीं कहेगा भैया मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वो लाइव निश्चय नहीं होता। जैसे आप, मैं आपको देख रहा हूं तो आप ऐसी कोई काम करोगे कि मुझको बुरा लगे, बचने की कोशिश करोगे, हो जाए वो अलग बात है, लेकिन पूरा पूरा बचने की कोशिश करोगे नहीं करोगे, तो आप ऐसा काम क्यों करने लगे जो ईश्वर को, जो देख रहा है ईश्वर, मतलब वो गुरु रूप में आकर उसने आपको गाइड किया ये गलत काम है, फिर भी आप करे जा रहे हो, कैसे करोगे आप। तो ईश्वर का लाइव निश्चय चाहिए, और वो लाइव निश्चय गुरु के जीवन से आपको मिलता है, किताबें पढ़ के नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए जब तक आप गुरु के बताए हुए प्रोग्राम के अनुसार दैनिक जीवन में टाइम उसके लिए अलॉट नहीं करते और वैसा नहीं करते तो ये तो आएगा ही नहीं कभी। और ये हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ये हो जाता है, और वैसे भी देख सकते हैं, इसलिए टाइम चाहिए। मैं यदि इतना कहूँ कि पूरा लाइफ टाइम तो आपको एक बार चाहिए ही इसमें दिल से लगाने के लिए, तब जाके ये संस्कार आपके अंदर घर कर जाते हैं, जो नेक्स्ट बर्थ में बचपन से ही आपको रेडीमेड मिलते हैं। यहाँ जैसे आपको मेहनत करनी पड़ रही है इस निश्चय के लिए, तो वो निश्चय बचपन में आके अंदर दृढ़ निश्चय पक्का ही होगा, बचपन से ही होगा। और लाइफ मेरी जब कंटिन्यूस है, डेथ बीच में है ही नहीं मेरी, तो देह करके डेथ हम हमको सोचते ना, रहता ही कहां पर। तो इसलिए घाटे का सौदा तो ही नहीं, जब मेरी लाइफ ही कंटिन्यूस है, जो अर्निंग कर ली मैंने यहां पर वो बचपन से मेरे साथ ही रहनी हो, तो मेरी अर्निंग है। और देह करके जो अर्निंग की है वो सभी छोड़ जानी है। तो इसलिए जब आपके अंदर ये लाइव निश्चय रहेगा ईश्वर का, जुमाई कहते थे प्रेमी, ये जीवित विश्वास है। तो ये आप देखेंगे खुद ही, जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं ये धीरे 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 आपकी कम होती जाएगी। एक आप डायरी में लिख लिए, एक साल आज जो कुछ भी है, आप जैसा भी सोते हैं, जैसा भी करते हैं, जो कुछ भी होता है, एक साल बाद आप डायरी में लिखिएगा, आज के दिन देखिएगा कि हाँ डिफरेंस आया नहीं आया, साफ पता लग गया। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये एक दिन आपके अंदर लाइव निश्चय आ जाता है। और लाइव निश्चय आने के लिए ये सिमरन जो है ये हाईएस्ट दर्जे का कर्म है, सत्कर्म, क्योंकि लाइव कांटेक्ट आपका ईश्वर से अंदर है सिमरन के द्वारा। बाकी करनी है सब बाहर की, लेकिन जो ईश्वर के साथ जो संबंध का स्थापना होनी है, उसका संबंध बनना है, उसके लिए सिमरन ही एक चीज है जो ईश्वर से संबंध आपको आपका जीव का ईश्वर का संबंध बनाती है। तो इसमें जिसके अंदर दृढ़ता है और इसमें सफलता के लिए जो संसार में प्योरिटी वो प्योर जीवन अपनाता है, निराशा की कोई बात ही नहीं है। कितनी भी देर लग जाए, आप लगातार काम हो रहा है, लगातार प्रगति हो रही है।